पहला खरोष्ठी लिपि। तक्षशिला के समीपवर्ती स्थान शाहबाजगढ़ी और मानसेरा में कुछ अशोककालीन शिलालेख मिले हैं जिनकी लिपि खरोष्ठी से मिलती जुलती है और जो दाएं से बाएं लिखी गई है। विद्वानों का अनुमान है कि यह आर्मेनिक लिपि है और आर्मेनिक लोगों का संबंध बहुत दिनों तक भारतवासियों से रहा है। इस खरोष्ठी लिपि के बारे में दो मत प्रसिद्ध हैं। कुछ विद्वान तो इसे विदेशी लिपि मानते हैं और कुछ इसे शुद्ध भारतीय लिपि कहते हैं। विदेशी मानने वाले की मान्यता यह है कि पहला खरोष्ठी लिपि आर्मेनिक लिपि की तरह बाएं से दाएं लिखी जाती है। दूसरा डॉडवेल भंडारकर आदि इतिहासकारों का कहना है कि खरोष्ठी का विकास भी आर्मोई की आसिरियाई लिपि से हुआ है जो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व समस्त हखमानी साम्राज्य की राज लिपि थी और जिसका प्रयोग मिस्र में हिंदुस्तान तक होता था। तीसरा खरोष्ठी लिपि के 11 अक्षरों की बनावट भी आर्मोई की लिपि के 11 अक्षरों से बहुत कुछ मिलती है। जैसे खरोष्ठी लिपि में क, आर्मोई में काफ, खरोष्ठी लिपि में ज, आर्मोई में जैन, खरोष्ठी में द, आर्मेनिक में दौलत, खरोष्ठी में न, आर्मेनिक में नून, खरोष्ठी में ब, आर्मेनिक में बैथ, खरोष्ठी में य, आर्मेनिक में योध, खरोष्ठी में व, आर्मेनिक में वाव, खरोष्ठी में र, आर्मेनिक में रेश, खरोष्ठी में श, आर्मेनिक में शिन, खरोष्ठी में स, आर्मेनिक में इत्साधे, खरोष्ठी ह, आर्मेनिक हे। चौथा डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा तथा डॉक्टर दिरिंजस का भी यही मत है कि खरोष्ठी का संबंध आर्मेनिक लिपि से है और आर्मेनिक लिपि विदेशी है, अतः खरोष्ठी भारतीय लिपि नहीं है। उसकी विपरीत इसे भारतीय सिद्ध करने वालों की ये विचार है। पहला डॉक्टर राजबली पांडे ने इंडियन पैलोग्राफी नामक पुस्तक में लिखा है कि खरोष्ठी एक भारतीय लिपि है। दूसरा खरोष्ठी लिपि के निर्माता एक भारतीय ऋषि माने जाते हैं। तीसरा कुछ विद्वान यह सिद्ध करते हुए यह लिपि भारतीय सीमा प्रांत के अर्धसभ्य लोगों के नाम पर विकसित हुई थी क्योंकि उनके खर जैसे ओष्ठ होते हैं और इसी आधार पर इसे खरोष्ठी कहते थे। डॉक्टर प्राजिलुस्की की मत से यह लिपि आरंभ में गधे की खाल पर लिखी जाती थी, इसलिए इसे पहले खरपृष्ठी कहते थे, परंतु पीछे यह नाम बिगड़कर खरोष्ठी हो गया है। डॉक्टर राजबली पांडे ने इसे खर के ओष्ठ अर्थात गधे के होठों के समान होने के कारण खरोष्ठी कहा और डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी के मत से खरोष्ठ शब्द हिब्रू के खरोशेत से बना है जिसका अर्थ लिखावट होता है, परंतु ये सभी मत अनुमान पर ही आधारित है। खरोष्ठी लिपि अरबी लिपि की तरह पहले दाएं से बाएं लिखी जाती थी, परंतु बाद में स्वभावतः ब्राह्मी लिपि के प्रभाव से बाएं से दाएं लिखी जाने लगी। इस लिपि में मूलतः स्वरों का अभाव था। वृत्त, रेखा तथा अन्य चिन्हों द्वारा जो ह्रस्व स्वरों का उल्लेख मिलता है उस पर स्पष्ट ही ब्राह्मी का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इसी तरह भ, ध और घ आदि वर्ण भी आर्मेनिक लिपि से ही नहीं मिलते अपितु इनका संबंध ब्राह्मी लिपि से ही जान पड़ता है। इसीलिए बहुत से लोग इसे सीमांत प्रदेश की भारतीय लिपि भी कहते हैं। जो भी हो, यह तो स्पष्ट है कि खरोष्ठी लिपि एक आरंभिक लिपि है जो न तो वैज्ञानिक है और न सर्वथा पूर्ण। यह तो एक काम चलाओ लिपि है। इसमें कुछ वर्ण आर्मेनिक लिपि से हैं और अधिकांश ब्राह्मी लिपि से लिए गए हैं। इसके वर्णों की कुल संख्या 37 है। इस लिपि में दीर्घ स्वरों के चिन्ह नहीं मिलते। इसमें मात्राओं का भी अभाव है और संयुक्त व्यंजन नहीं के बराबर है। दूसरा ब्राह्मी लिपि। यह एक अत्यंत प्राचीन लिपि है जिसके बारे में मुख्यतः दो मत मिलते हैं। पहला मत तो यह है कि यह लिपि पूर्णतया भारतीय है, किंतु दूसरा मत यह भी मिलता है कि इस लिपि का विकास किसी विदेशी लिपि से हुआ है। इस लिपि को पूर्णतया भारतीय मानने वाले विद्वानों के विचार इस प्रकार मिलते हैं। पहला कनिंघम, लॉसन, थॉमस, डॉसन आदि विद्वानों का विचार है कि आर्यों ने किसी पुरानी लिपि के आधार पर इस ब्राह्मी लिपि का विकास किया था। दूसरा डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का विचार है कि यह लिपि हमें अत्यंत प्रौढ़ अवस्था में मिली है और इसके आरंभिक विकास का कुछ पता नहीं चलता, परंतु इस लिपि का किसी बाहरी स्रोत और प्रभाव से विकसित होना सिद्ध नहीं होता। तीसरा डॉक्टर राजबली पांडे का विचार है कि इस ब्राह्मी लिपि के कुछ चिन्ह सिंधु घाटी की लिपि से मिलते हैं, अतः निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस लिपि का विकास सिंधु घाटी की लिपि से हुआ है। चौथा ब्राह्मी का अर्थ है वैदिकी, अतः कुछ विद्वानों का विचार है कि ब्राह्मी लिपि का विकास वैदिक काल की आर्य लिपि से हुआ है। अल्बरूनी ने लिखा है कि हिंदुओं की वर्णमाला पहले लुप्त हो गई थी, बाद में व्यास पराशर ने 50 वर्णों की वर्णमाला खोज निकाली, यही ब्राह्मी लिपि की वर्णमाला थी। व्यास का संबंध वेदों के संपादन से भी हो रहा है और वेदपीठ यानी कुरुक्षेत्र तथा ब्रह्मवर्त से भी। वेदों का संपादन सारस्वत यानी ब्रह्म प्रदेश में ही हुआ था, अतः यह वैदिक लिपि ही है। पांचवा, कुछ विद्वान इस लिपि की उत्पत्ति ब्रह्मा से मानते हैं। चीनी विश्वकोश फावान शोलेन में इस लिपि के प्रवर्तक ब्रह्मा नामक कोई आचार्य बताए गए हैं। छठा, ब्राह्मणों एवं शिक्षित वर्गों के प्रयोग से अधिक आने के कारण भी इस लिपि का नाम ब्राह्मी पड़ गया होगा, अतः यह भारतीय ही जान पड़ती है। सातवा, यह लिपि भारत में शताब्दियों पूर्व से प्रचलित है। इसके प्राचीनतम नमूने पिपरावा बिड़ली आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इन शिलालेखों से यही अनुमान लगाया जाता है कि यह लिपि अत्यंत प्राचीन है और भारतीय है। आठवां, जगमोहन शर्मा ने सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित अपनी लेखमाला के अंतर्गत यही सिद्ध किया है कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति वैदिक चित्र लिपि से हुई थी। नौवां, इसके विपरीत कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो ब्राह्मी लिपि को भारतीय नहीं मानते, उनके विचार इस प्रकार मिलते हैं। पहला, फ्रेंच विद्वान कुपेरी ने ब्राह्मी की उत्पत्ति चीनी लिपि से सिद्ध की है। दूसरा, डॉक्टर अल्फ्रेड मूलर, शेनार्ट, हल्वे, विल्सन, प्रिंसेप आदि ने ब्राह्मी का विकास यूनानी लिपि से सिद्ध किया है और बताया है कि सिकंदर के आक्रमण के समय भारतीयों ने यूनानियों से लिखना सीखा था। तीसरा, बेवर, क्रस्ट आदि विद्वानों का विचार है कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति सामी लिपि से हुई है, क्योंकि सामी और उनके अक्षर काफी मिलते हैं। चौथा, डॉक्टर वूलर का मत है कि भारत की प्राचीनतम लिपि तो सिंधु घाटी की लिपि है और वह लिपि ब्राह्मी से ही मिलती नहीं है, अतः ब्राह्मी का विकास किसी विदेशी लिपि से हुआ है और संभवतः इसका विकास सेमेटिक लिपि से हुआ है। पांचवा, एडवर्ड थॉमस का मत है कि ब्राह्मी लिपि का निर्माण द्रविड़ों ने किया होगा। छठा, डॉक्टर डिरिंजर ने इस लिपि का विकास उत्तरी सिमी लिपि सामी लिपि से और टेलर, केनल, सेथ आदि ने इसकी उत्पत्ति दक्षिणी सामी लिपि से सिद्ध की है। सातवां, जेंसर और बेनफे ने इस लिपि की उत्पत्ति फिनिशी लिपि से सिद्ध की है। अन्य यूरोपीय विद्वान इसका विकास फिनिशी लिपि से मानते हैं और कहते हैं कि फिनिकिया फनिक लोग दक्षिण भारत में व्यापार करते थे और वे ही अपने साथ इस लिपि को भारत में लाए थे, वही लिपि ब्राह्मी है। आठवां, हल्वे ने ब्राह्मी को एक मिश्रित लिपि कहा है। इसमें 8 व्यंजक आर्मेइक लिपि से, 6 व्यंजक और कुछ स्वर खरोष्ठी से और 5 व्यंजन यूनानी लिपि से लिए गए हैं। नौवां, डॉक्टर आर एम साहा ने इस लिपि का विकास अरबी लिपि से सिद्ध किया है। दसवां, डीके के अनुसार असीरिया में किलाक्षरों से दक्षिणी सीमा से निकली है और उसी से ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ है। इस प्रकार अनेकानेक मत ऐसे मिलते हैं जो ब्राह्मी को विदेशी लिपि सिद्ध करने का भरसक प्रयत्न करते हैं, परंतु लाख प्रयत्न करने पर भी इसकी उत्पत्ति किसी विदेशी लिपि से सिद्ध नहीं होती, क्योंकि डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने स्पष्ट लिखा है कि सामी लिपि और ब्राह्मी लिपि का कोई साम्य नहीं है। किसी एकाद अक्षर के आधार पर इसे सामी लिपि से विकसित नहीं माना जा सकता। चीनी लिपि पूर्णतया चित्र लिपि है और ब्राह्मी लिपि अक्षरात्मक है, अतः चीनी से भी इसका विकास संभव नहीं है। यूनानी लिपि से इसका विकास मानना असंभव है, क्योंकि सिकंदर के आक्रमण से पूर्व ही भारत में लिपि का विकास हो गया था, अतः यूनानियों से लिपि सीखना हास्यास्पद है। जो विद्वान द्रविड़ लिपि से इसका विकास सिद्ध करते हैं वे यह भूल जाते हैं कि द्रविड़ लिपि का प्राचीनतम रूप तमिल में है और तमिल में केवल प्रथम और पंचम वर्ण ही है, जबकि ब्राह्मी में आरंभ से ही 5 वर्ण मिलते हैं। जो विद्वान फिनिशिश ब्राह्मी के विकास सिद्ध करते हैं उनकी मान्यता एवं तर्कों का खंडन डॉक्टर राजबलि पांडे, कोलब्रुक, कनिंगम, फ्लीट आदि विद्वान ने अपनी अपनी खोजों के आधार पर कर दिया है। इसके साथ ही डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने तो यहाँ तक लिखा है कि सामी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, क्योंकि सामी लोगों ने भारतीय व्यापारियों से लिपि सीखी थी। साथ ही सामी लिपियाँ पूर्ण हैं, दाएं से बाएं लिखी जाती हैं और इनमें 10-12 भारतीय ध्वनियाँ ही विद्यमान हैं, जबकि ब्राह्मी लिपि पूर्ण है, बाएँ से दाएँ लिखी जाती है और भारत में अत्यंत प्राचीन काल से प्रचलित है। अतएव इस निर्विवाद सत्य है कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति भारत में ही हुई थी। इसका निर्माण वैदिक साहित्य की रक्षा के लिए अत्यंत प्राचीन काल में ही हो गया था और इसे उन्हीं ऋषियों मुनियों ने बनाया था जिन्होंने ध्वनिशास्त्र, व्याकरण, शब्द विज्ञान, पद पाठ पद्धति आदि का आविष्कार किया था। ब्राह्मी लिपि का विकास। ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने अभी तक 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक के ही मिले हैं। 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 350 ईस्वी पूर्व तक थोड़े बहुत भेद के साथ ही इसका स्वरूप भारत में मिलता है। इसके अनंतर यह लिपि दो धाराओं में विभक्त हो गई थी, जो उत्तरी धारा तथा दक्षिणी धारा के नाम से अभिहित की गई जाती है। क उत्तरी धारा। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी धारा मुख्यतः उत्तर भारत में प्रचलित रही। इसके अंतर्गत चार लिपियां विकसित हुई, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि और प्राचीन नागरी लिपि। पहला, गुप्त लिपि। यह लिपि भारत के सुप्रसिद्ध गुप्त वंशीय राजाओं के शासनकाल में विकसित हुई थी, इसी कारण इसका नाम गुप्त लिपि दिया गया है। यह लिपि ईसा की चौथी तथा पांचवीं शताब्दी प्रचलित हुई थी और इसमें गुप्त वंशीय राजाओं के लेख पर्याप्त मात्रा में मिले हैं। दूसरा, कुटिल लिपि। यह लिपि गुप्त लिपि से विकसित हुई थी और इसके वर्ण कुछ टेढ़े होते थे, इसलिए विद्वानों ने इसका नाम कुटिल लिपि दिया है। यह लिपि उत्तरी भारत में ईसा की छठी शताब्दी से नवीं शताब्दी तक प्रचलित रही। तीसरा, शारदा लिपि। इस लिपि का विकास कुटिल लिपि से हुआ है। यह लिपि मुख्यतः कश्मीर में प्रचलित रहती थी और कश्मीर की अधिष्ठात्री देवी शारदा के नाम पर इसे शारदा लिपि कहा जाता है। इस लिपि ईसा की दसवीं शताब्दी में विकसित हुई थी। इसी शारदा लिपि से कश्मीरी, टकरी, लंडा, गुरुमुखी, डोंगरी, चमियाली तथा कूची लिपियों का जन्म हुआ है। चौथा, प्राचीन नागरी लिपि। इस लिपि का विकास भी कुटिल लिपि से ही हुआ है। यह लिपि ईसा की नवीं शताब्दी के अंतिम चरण में विकसित हुई थी। मुख्यतः यह लिपि उत्तरी भारत में प्रचलित रही, किंतु दक्षिण भारत में भी कुछ स्थानों पर इसका प्रचार रहा है। दक्षिण भारत में इसे नंदनागरी के नाम से पुकारा जाता था। आधुनिक युग की देवनागरी, गुजराती, महाजनी, मैथिली, कैथी, राजस्थानी, महाराष्ट्री, बंगला आदि लिपियाँ इस नागरी लिपि से विकसित हुई हैं। इसका प्रचार ईसा के 16वीं शताब्दी तक मिलता है। ख, दक्षिणी धारा। ब्राह्मी लिपि की दक्षिणी धारा का प्रचार एवं प्रसार मुख्यतः दक्षिणी भारत में हुआ है। इस धारा के अंतर्गत 6 लिपियाँ विकसित हुई थी, तेलुगु, कन्नड़ लिपि, ग्रंथ लिपि, तमिल लिपि, कलिंग लिपि, मध्यदेशी लिपि और पश्चिमी लिपि। पहला, तेलुगु कन्नड़ लिपि। यह लिपि ईसा की 5वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में प्रचलित रही और इसका प्रचार आंध्र के दक्षिणी भाग, तमिलनाडु के उत्तरी पूर्वी एवं कर्नाटक में था। इसी लिपि से 14वीं शताब्दी के पश्चात आधुनिक तेलुगु एवं कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ है। दूसरा, ग्रंथ लिपि। इस लिपि का विकास भी ब्राह्मी लिपि की दक्षिणी धारा से हुआ है। इस लिपि का प्रयोग सर्वाधिक संस्कृत ग्रंथों के लिखने के लिए होता था, क्योंकि इस लिपि का प्रचार तमिलनाडु में था और वहाँ की तमिल लिपि अपूर्ण थी, इसी कारण इसका नाम ग्रंथ लिपि पड़ गया है। यह लिपि ईसा के 7वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक तमिलनाडु में प्रचलित रही। तीसरा, तमिल लिपि। इस लिपि का जन्म ब्राह्मी की दक्षिणी धारा से हुआ है। इस लिपि का विकास ईसा के 7वीं शताब्दी के आरंभ में ही हो गया था। इसके अनेक वर्ण ग्रंथ लिपि से मिलते हैं। इसके साथ ही क और र व्यंजन ब्राह्मी लिपि की उत्तरी धारा से गए हुए प्रतीत होते हैं। वर्तमान तमिल लिपि का विकास इसी लिपि से हुआ है। तमिल भाषा की प्रसिद्ध लिपि है। चौथा, कलिंग लिपि। यह लिपि ब्राह्मी लिपि की दक्षिणी धारा से निकली है। ईसा की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक इसका प्रचार कलिंग यानी उड़ीसा के आसपास रहा है, इसलिए इसे कलिंग लिपि कहा जाता है। इस लिपि पर मध्यदेशी, पश्चिमी ग्रंथ, तेलुगु, कन्नड़ी, नागरी आदि लिपियों का प्रभाव भी समय समय पर पड़ता रहा है। इसी कारण इस लिपि के भिन्न भिन्न काल में भिन्न भिन्न रूप मिलते हैं। पांचवा, मध्यदेशी लिपि। यद्यपि इस लिपि का विकास ब्राह्मी की लिपि दक्षिणी धारा से हुआ है, तथापि इस पर ब्राह्मी लिपि की उत्तरी धारा का भी प्रभाव रहा है। यह लिपि ईसा की 5वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, हैदराबाद राज्य के उत्तरी भागों, मैसूर के कुछ भागों में प्रचलित रही थी। इसके अक्षर चौखूटे अथवा संदूक की सी आकृति के होते थे, जिन्हें समकोणाकृति वाले कह सकते हैं। छठा, पश्चिमी लिपि। यह लिपि भी ब्राह्मी की दक्षिणी धारा से निकली थी और इसका प्रचार ईसा की 5वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक भारत के मध्य तथा दक्षिण के पश्चिमी प्रदेश अर्थात गुजरात, काठियावाड़, नासिक, खानदेश, सितारा यानी हैदराबाद, मैसूर का कुछ भाग, कोंकण आदि में रहा है। देवनागरी लिपि का विकास। क, नामकरण। ब्राह्मी से विकसित प्राचीन नागरी लिपि से ही देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। इस लिपि के नाम के बारे में अनेक मत मिलते हैं। पहला, कतिपय विद्वानों का विचार है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों में इसका सर्वाधिक प्रचार होने के कारण इस लिपि को नागरी या देवनागरी कहते हैं। दूसरा, कुछ विद्वानों ने बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में उल्लिखित नाग लिपि से इसका संबंध स्थापित किया है, परंतु डॉक्टर वार्नेट का मत है कि नाग लिपि एवं नागरी लिपि दोनों सर्वथा भिन्न लिपियां हैं। तीसरा, कुछ विद्वानों का विचार है कि यह लिपि मुख्यतया नगरों में ही प्रचलित थी, इसी कारण इसे नागरी कहा जाता है। और जैसे संस्कृत भाषा को देववाणी कहा जाता है, इसी तरह इस नागरी लिपि को ही देवनागरी लिपि कहने लगे हैं। चौथा, आर्यश्याम शास्त्री का मत है कि देवताओं की प्रतिमाओं के निर्माण से पूर्व यहाँ पर उनकी उपासना सांकेतिक चिन्हों के द्वारा होती थी, जो कई प्रकार के त्रिकोणादि यंत्रों के बीच में अंकित किए जाते थे। इस यंत्र को देवनगर और उन चिन्हों को देवनागर कहा जाता था। उन देवनागर चिन्हों से इसका विकास होने के कारण इसे देवनागरी लिपि कहा गया है। पांचवा, एक में यह भी प्रचलित है कि पाटलिपुत्र को पहले नागर और चंद्रगुप्त द्वितीय को देव कहा जाता था, उन्हीं के नाम पर इस लिपि को देवनागरी नाम दिया गया। छठा, कुछ विद्वानों की राय है कि काशी को पहले देवनगर कहा जाता था और काशी में इसका सर्वाधिक प्रचार होने के कारण अथवा काशी विद्या का केंद्र होने के कारण इसे देवनगर के आधार पर इसी लिपि का नाम देवनागरी इसी तरह पड़ गया है, जिस तरह दक्षिण में नंदीनगर से नंदीनागरी लिपि नाम पड़ा है। सातवां, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का मत है कि मध्ययुग के स्थापत्य की एक शैली का नाम नागर था, जिसमें चौकोर आकृतियां होती थी। इधर नागरी लिपि के अधिकांश अक्षर भी चौकोर होते, इसी आधार पर इसे नागरी या सम्मान देने के लिए देवनागरी लिपि कहा गया है। उक्त सभी मतों में से कौन सा मत सर्वथा ठीक है, यह तो निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता, परंतु यह निर्विवाद सत्य है कि जिस तरह श्रेष्ठ वाङ्मय वाली भाषा संस्कृत को परिष्कृत एवं परिमार्जित करने के कारण देववाणी कहा जाता है, उसी तरह संस्कृत वाङ्मय को लिपिबद्ध करने के कारण इस परिष्कृत एवं परिमार्जित लिपि को देवनागरी लिपि नाम दिया गया है। ख, विकास। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के नरेश जय भट्ट के एक शिलालेख में मिलता है। आठवीं शताब्दी के राष्ट्रकूट नरेशों में भी यह लिपि प्रचलित थी और नवीं शताब्दी में बड़ौदा के ध्रुवराज ने भी अपने राज्य देश में इसी लिपि का प्रयोग किया था। विजयनगर राज्य और कोंकण में भी इसी देवनागरी लिपि का प्रचार था। इसी आधार पर कुछ विद्वान यह स्वीकार करते हैं कि देवनागरी का विकास सर्वप्रथम दक्षिण में ही हुआ था और वहीं से बाद में यह लिपि उत्तर भारत में प्रचलित हुई। वैसे यह लिपि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में प्रचलित रही। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात आदि प्रांतों में उपलब्ध शिलालेख, ताम्रपत्र, हस्तलेख, प्राचीन ग्रंथ आदि में देवनागरी लिपि ही अधिक मिली है। आज भी यह लिपि संपूर्ण हिंदी प्रदेश के अतिरिक्त भारत के अधिकांश प्रांतों में प्रयुक्त होती है और हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली और हिंदी की सभी बोलियों में इसी लिपि का प्रयोग होता है। महाराष्ट्र प्रदेश में इस लिपि को बालबोध की संज्ञा दी जाती है। बालबोध के कथ में वर्ण अ, छ, झ, ल और र अब व्यापक रूप से देवनागरी लिपि में अपनाए जा चुके हैं। ईसा की 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक देवनागरी लिपि मेवाड़ के गुहिलवंशी राजा, मारवाड़ के परिहार राजा, मध्य प्रदेश के हयहय वंशी राजा, राठौर के कलचुरी नरेश, कन्नौज के गहडवाल और गुजरात के सोलंकी राजाओं में पर्याप्त मात्रा में प्रचलित रही। आरंभ से इस लिपि के वर्णों पर शिरोरेखा न थी और अ, घ, म, य, श और स के सिर दो भागों में विभक्त थे। इतना ही नहीं, दसवीं शताब्दी के देवनागरी लिपि के अनेक वर्ण आधुनिक वर्गों से पृथक थे। धीरे धीरे इन्हें सुंदर बनाने का प्रयास होता रहा और 14वीं शताब्दी में आकर इस लिपि के वर्णों का यह रूप स्थिर हो गया जो आजकल मिलता है। देवनागरी लिपि पर अन्य लिपियों का प्रभाव। देवनागरी लिपि पर अन्य लिपियों का भी अत्यधिक प्रभाव पड़ा है, जिसके फलस्वरूप इसमें पर्याप्त परिवर्तन हुए हैं। जैसे पहले देवनागरी लिपि में जिह्वा मूलीय ध्वनियों को अंकित करने के लिए चिन्ह न थे, परंतु फारसी लिपि में ऐसी ध्वनियां अधिक प्रचलित थीं। जब से फारसी लिपि का प्रभाव इस लिपि में पड़ा, तब से देवनागरी लिपि में भी जिह्वा मूलीय ध्वनियों को अंकित करने के लिए वर्णों के नीचे बिंदी लगाने की प्रथा चल निकली। आज इस लिपि में इसी कारण जीवामूली ध्वनियां इस प्रकार लिखी जाती हैं, क, ख, ग, ज, फ आदि। दूसरे देवनागरी लिपि को मराठी लिपि ने भी प्रभावित किया, क्योंकि 19वीं शताब्दी तक इस लिपि में इस तरह का श्र वर्ण प्रचलित था, किंतु आजकल उसके स्थान पर अ वर्ण प्रचलित हो गया है। ऐसे ही झ के स्थान पर झ और ल वर्ण मराठी के प्रभाव से इस लिपि में आ गए हैं। तीसरे, बंगला लिपि ने भी देवनागरी को प्रभावित किया है, क्योंकि बंगला लिपि के अधिकांश वर्ण गोल होते हैं और देवनागरी लिपि में पहले अधिकांश वर्ण चौकोर होते थे, परंतु आजकल देवनागरी लिपि के भी अक्षर उतने चौकोर नहीं रहे, अपितु अधिकांश वर्ण गोल लिखे जाते हैं। चौथे इस लिपि को गुजराती लिपि में ने प्रभावित किया है, क्योंकि गुजराती वर्णों में शिरोरेखा नहीं होती और आजकल बहुत से लोग देवनागरी लिपि में लिखते समय भी वर्णों में शिरोरेखा नहीं लगाते। पांचवें, इस लिपि में अंग्रेजी ने भी प्रभावित किया है। अंग्रेजी के प्रभाव से आजकल देवनागरी लिपि में अल्पविराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह आदि का विकास तो हुआ ही है, साथ ही अंग्रेजी के कतिपय ध्वनियों को अंकित करने के लिए भी प्रयास हुआ है, जैसे कॉलेज, डॉक्टर आदि में आए हुए ओ के लिए अ चिन्ह विकसित किया गया हो, कॉलेज, डॉक्टर आदि लिखा जाता है। अर्ध विवृत ए के लिए ए चिन्ह प्रयुक्त होता है, जैसे कॉलेज, ऐसे ही विवृत अ के लिए अ चिन्ह प्रयुक्त होता है। ये सभी लिपि चिन्ह अंग्रेजी के प्रभाव से विकसित हुए हैं। इतना ही नहीं, पहले पूर्ण विराम के लिए चिन्ह प्रयुक्त होता था, परंतु आजकल अंग्रेजी का पूर्ण विराम इस लिपि में भी प्रयुक्त होने लगा है। देवनागरी के अंकों का विकास। देवनागरी के अंकों के बारे में विद्वानों का विचार है कि जब से प्राचीन लिपि के चिन्ह मिलते हैं तभी इसे अंकों के चिन्ह भी उपलब्ध हो जाते हैं। इन अंकों की सर्वप्रथम उत्पत्ति भारत में ही हुई थी। इसका प्रमाण यह है कि अरबी में आरंभ से ही अंकों को हिंदसा कहा जाता है, जिसका अर्थ है हिंद या हिंदुस्तान से लिया हुआ। भारत में वैदिक साहित्य के अंतर्गत ज्योतिष गणना के कई प्रमाण मिलते हैं, जिनसे अंकों के प्रादुर्भाव का पता सहज ही चल जाता है। अंकों की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों ने कई प्रकार के मत व्यक्त किए हैं। कुछ विद्वान तो यह मानते हैं कि अंकों का विकास रेखाओं से हुआ है, क्योंकि आज भी कितने ही अनपढ़ लोग रेखाएं खींचकर गणना किया करते हैं। पुरानी लिपि में भी ऐसे अंक मिलते हैं जिनमें केवल रेखाएं ही हैं। एक विद्वान का विचार है कि अंकों के सूचक शब्दों के प्रथम अक्षर से अंकों का विकास हुआ है, जैसे एक, के ए से एक विकसित हुआ। प्राचीन लिपि में शून्य के लिए कोई चिन्ह नहीं मिलता। पहले 10, 20, 100, 1000 आदि के लिए अलग अलग चिन्ह प्रचलित थे, परंतु नवीन देवनागरी लिपि में शून्य का प्रयोग देखा जाता है। इस शून्य के प्रचार से बड़ी सरलता आ गई है। यह नवीन अंक चिन्ह ईसा के 5वीं शताब्दी से आरंभ हो गए थे, परंतु शून्य का विकास बहुत पीछे हुआ। देवनागरी की विशेषताएं। देवनागरी लिपि पूर्ण पर्याप्त काल से भारतीय आर्य भाषाओं की लिपि रही है, और आज भी हिंदी, मराठी, नेपाली तथा समस्त हिंदी बोलियों की यही लिपि है। भारत के संविधान ने जब से हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया है, तब से देवनागरी को राष्ट्रीय लिपि का महत्वपूर्ण पद प्रदान किया है। यह लिपि संस्कृत भाषा की भी एकमात्र लिपि है। संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय इसी लिपि में लिखा मिलता है। इस लिपि में निम्नलिखित विशेषताएँ दृष्टिगोचर होती हैं। पहला, देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजन को अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से क्रमबद्ध किया गया है। इसमें 14 स्वर और 35 व्यंजन मूल व्यंजन हैं, साथ ही 3 संयुक्त व्यंजन हैं, छ, त्र और ज्ञ। इसके कुछ और भी आवश्यक व्यंजनों का समावेश इस लिपि में कर लिया गया, जैसे अळ, ळ आदि। दूसरा, यह लिपि अत्यंत गत्यात्मक एवं व्यवहारिक है, इसलिए इसमें आवश्यकतानुसार अनेक ध्वनि चिन्हों का समावेश होता रहा है। जैसे पहले इसमें जीवा मूली ध्वनियों के लिए चिन्ह नहीं थे, परंतु पीछे बना लिए गए। ऐसे ही ध्वनिशास्त्रीय अध्ययन के लिए और भी कई ध्वनि चिन्ह बनाए गए हैं, जिनके फलस्वरूप इसे संपन्न बनाने का प्रयास हो रहा है, जैसे अ, अ, ए, ए आदि। ऐसा करने से यह लिपि भारत की सभी भाषाओं को लिखने के लिए उपयोगी हो सकती है। तीसरा, यह लिपि वर्णनात्मक है और उसके वर्णों का नाम उच्चारण के सर्वथा अनुरूप है। जैसे फारसी लिपि में वर्ण को जिम, दाल आदि कहा जाता है, जबकि इनका उच्चारण क्रमशः ज और द होता है। रोमन लिपि में एच, टी, एस वर्ण होते हैं और इनका उच्चारण क्रमशः ह, ट और स होता है, परंतु देवनागरी लिपि के वर्णों में ऐसी बात नहीं। यहाँ जो वर्ण जैसा होता है उसका उच्चारण भी वैसा ही होता है। चौथा, देवनागरी लिपि में प्रत्येक लिपि के ध्वनि के लिए अलग चिन्ह है, अतएव एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह होना उसकी सबसे बड़ी विशेषज्ञता है। अन्य लिपियों में एक ही ध्वनि के लिए कई कई चिन्ह देखे जाते हैं, जैसे फारसी लिपि में स ध्वनि के लिए सीन, स्वाद आदि का प्रयोग होता है। रोमन लिपि में क ध्वनि के लिए सी, के, क्यू का प्रयोग होता है आदि। पांचवा, इस लिपि में अ को छोड़कर शेष सभी स्वरों के ह्रस्व एवं दीर्घ मात्राएं विद्यमान हैं, जिससे व्यंजनों के साथ उनका प्रयोग बड़ी सरलता से हो सकता है। छठा, इसमें व्यंजनों का संयोग अंकित करने की पद्धति सर्वथा उपयुक्त है। सातवां, देवनागरी लिपि के वर्ग अत्यंत कलात्मक, सुंदर और सुसंगत व्यवस्थित ढंग से लिखे जाते हैं और इस लिपि में लिखित शब्द अपेक्षाकृत स्थान भी कम घेरते हैं। जैसे देवनागरी में लिखित महेश्वर की अपेक्षा रोमन लिपि में लिखित महेश्वर अधिक स्थान घेरता है। आठवां, इस लिपि में प्रत्येक वर्ण का उच्चारण होता है, जबकि संसार की अन्य लिपियाँ ऐसी भी हैं जिनमें बहुत से लिखित वर्णों का उच्चारण नहीं किया जाता। जैसे रोमन लिपि में लिखित अंग्रेजी के शब्द नाइफ में के का उच्चारण ही नहीं किया जाता तथा नाइट में जीएच का उच्चारण नहीं होता। नौवां, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें वर्णों के उच्चारण निश्चित हैं और वे प्रत्येक स्थान पर उसी प्रकार उच्चारण किए जाते हैं, जबकि अन्य लिपियों में कोई अक्षर कहीं कुछ बोला जाता है और कहीं कुछ। जैसे देवनागरी लिपि में खटपट सरसर हट आदि शब्दों में जो वर्ण आए हैं उनका उच्चारण कहीं बदलता नहीं है, जबकि रोमन लिपि में प्रायः उच्चारण बदल जाया करते हैं। जैसे रोमन लिपि में लिखित पट का उच्चारण बट होता है, जबकि पुट का उच्चारण पुट हो जाता है। यहाँ एक स्थान पर यू का उच्चारण अ की तरह और दूसरे स्थान पर ऊ की तरह हो गया है। ऐसा देवनागरी लिपि में कभी नहीं होता। दसवां, देवनागरी लिपि की यह विशेषता और भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ स्वर की ह्रस्वता और दीर्घता एक ही आकृति में तनिक सा अंतर करके दिखाई जाती है। जैसे ह्रस्व दीर्घ आ, ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व उ दीर्घ ऊ आदि। इनके अतिरिक्त 25 व्यंजनों में से इसके पहले और तीसरे अल्प प्राण होते हैं और दूसरे और चौथे महाप्राण होते हैं तथा पाँचवें वर्ण अनुनासिक होते हैं। अंतिम चार व्यंजन अंतस्थ हैं तथा शेष चार व्यंजन उष्म्य हैं। ग्यारहवां, देवनागरी लिपि के निर्माण में एक और विशेषता उल्लेखनीय यह है कि इसका निर्माण उच्चारण को ध्यान में रखकर बड़े वैज्ञानिक ढंग से किया गया है। जैसे सर्वप्रथम हम कंठ से बोलते हैं तो यहाँ पर भी अ क ख ग घ अंग कंठ ध्वनियाँ। इसके उपरांत हमारे वाग यंत्र में तालु है जो कि ई च छ ज झ इय तालव्य ध्वनियाँ हैं। तदनंतर मूर्धा आती है तो यहाँ भी री ट ठ ड ढ अळ मूर्धन्य ध्वनियाँ रखी गई हैं। इसके उपरांत दंत आते हैं तो यहाँ पर भी री त थ द ध न ध्वनियाँ दंत हैं। इसके पश्चात उष्ठ आते हैं और यहाँ भी उ प फ ब भ म उष्ठ ध्वनियाँ हैं। इस तरह क्रम से वाग्य यंत्र के अनुसार ध्वनि चिन्हों का निर्माण वैज्ञानिक पद्धति पर किया गया है। देवनागरी लिपि के अभाव, देवनागरी लिपि में जहाँ बहुत सी विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं वहाँ इसमें कतिपय अभावों के भी दर्शन होते हैं। अभाव इस प्रकार मिलते हैं। पहला, देवनागरी लिपि में चिन्हों की एक रूपता सर्वत्र नहीं दिखाई देती। कुछ ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनके लिए एक से अधिक चिन्हों का भी प्रचार है। जैसे र के लिए कर और क्र चिन्ह, ल के लिए ल और ल चिन्ह, अ के लिए अ और अ चिन्ह, अड़ के लिए अड़ और अड़ चिन्ह प्रचलित हैं। दूसरा, इस लिपि में क्रियाओं के प्रयोग की कई एक व्यवस्था नहीं। कहीं कोई मात्रा ऊपर लगती है, कहीं नीचे लगती है, कहीं आगे लगती है, कहीं पीछे लगती है। जैसे ए की मात्रा ऊपर लगती है यानी के, ऊ की मात्रा नीचे लगती है जैसे कू, ई की मात्रा वर्ण के पहले लगती है यानी की, और ई की मात्रा वर्ण के बाद लगती है जैसे की। इसमें बड़ी कठिनाई होती है। तीसरा, इस लिपि में संयुक्त व्यंजनों को लिखने का ढंग भी समान नहीं होता है। कभी तो पहला व्यंजन आधा करके लिखा जाता है, कभी जैसे गुप्त अम्ब आदि, और कभी पर दूसरा व्यंजन आधा करके लिखे जैसे ड्राम भ्रम क्रम आदि। कहीं कहीं ऐसा संयोग होता है कि एक नया ही रूप हो जाता है, जैसे क और श के योग से छ, त और र के योग से त्र तथा ज और अ के योग से ज्ञ। चौथा, इस लिपि के अक्षरात्मक होने के कारण इसका ध्वनि शास्त्रीय अध्ययन करना सर्वथा दुष्कर कार्य है, क्योंकि इस शब्दों को पढ़कर कोई यह पता नहीं लगा सकता है कि अमुक शब्द में कितनी ध्वनियाँ। जैसे मर्म शब्द में 5 ध्वनियाँ हैं, म अ र म अ, किंतु इस लिपि में केवल 3 ही ध्वनियाँ लिखाई गई। पांचवा, इस लिपि में कुछ वर्ण ऐसे हैं जो लिखे कुछ जाते हैं किंतु जिन्हें कुछ और ही पढ़ा जाता है। जैसे खाना को रवाना पढ़ा जा सकता है, अरण्य को अरराय पढ़ा जा सकता है आदि। छठा, इस लिपि में अखिल भारतीय लिपि बनाने की क्षमता नहीं है, क्योंकि इसमें द्रविड़ लिपियों की तरह ह्रस्व ए ह्रस्व ओ का अभाव है। उनकी जैसे श र न भी नहीं है, मराठी लिपि में जैसे च ज नहीं है और कश्मीरी वर्ड्स च ज थ ध्वनियाँ भी नहीं हैं, केवल मराठी ल को ले तो इसने अपना लिया है। सातवां, इस लिपि के लिखने में कभी कभी शिरोरेखा में बड़ी गड़बड़ी डालती है, क्योंकि यदि भ के ऊपर शीघ्रता में पूरी शिरोरेखा हो गई तो वह म पढ़ा जाएगा और भरा का मरा हो जाता है। ऐसे ही ध के ऊपर शिरोरेखा पूरी हो जाने पर घ हो जाता है और धड़ी का घड़ी हो जाता है। आठवां, इसके अतिरिक्त इस लिपि में दो प्रकार के अक्षर भी प्रचलित हो गए हैं, जैसे झ और झ, ल और ल, अ श श आदि। इससे इसकी एक रूपता नष्ट हो गई है और वर्ण द्वैध उत्पन्न हो गया है। नौवां, इस लिपि में कतिपय संयुक्ताक्षर स्वतंत्र व्यंजन जैसे हो गए हैं और साधारण व्यक्ति उनको संयुक्ताक्षर नहीं समझता, क्योंकि वे स्वतंत्र व्यंजन की तरह ही लिखे जाते हैं, जैसे छ त्र ज्ञ श्र श्री। इनको क्वश त्र चं श्र और श्री की तरह लिखा जाना चाहिए। दसवां, इस लिपि के अक्षरों में जिस प्रकार वर्ण द्वैत आ गया है, वैसे ही इसके अंकों में भी द्वैत भाव दृष्टिगोचर होता है, जैसे पाँच आठ आदि। देवनागरी लिपि के सुधारों का इतिहास। देवनागरी लिपि के नए अभावों, कमियों एवं दोषों को देखकर विद्वानों ने इसके सुधार का प्रयास किया है। यह ठीक है कि देवनागरी लिपि अन्य लिपियों की अपेक्षा कहीं अधिक वैज्ञानिक एवं उपयोगी है, किंतु आज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इसमें भी सुधार होना अत्यंत आवश्यक जान पड़ता है। इसी कारण पिछली शताब्दियों से ही विद्वान इसको पूर्ण वैज्ञानिक एवं अधिकाधिक उपयोगी बनाने के लिए इसमें सुधार करने के प्रस्ताव रहे हैं और इसमें पर्याप्त सुधार का प्रयास भी हुआ है। देवनागरी लिपि में सुधार करने की ओर सर्वप्रथम बम्बई राज के विद्वानों का ध्यान गया और महादेव गोविंद रनाडे ने एक सुधार योजना तैयार की। तदनंतर महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे ने एक लिपि सुधार समिति का गठन किया और महाराष्ट्र मराठी साहित्य सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन में इस प्रश्न पर विचार विमर्श करके एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। लोकमान्य तिलक ने 1904 ईस्वी में अपने पत्र केसरी में सुधार की चर्चा की और 1926 ईस्वी तक उन्होंने टाइपों में छटाई करते करते 190 टाइपों का एक फॉन्ट निर्मित कराया, जो तिलक टाइप के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त वीर सावरकर, महात्मा गांधी, विनोबा भावे तथा काका कालेकर ने भी इस लिपि को सरल एवं सुगम बनाने का प्रयास किया। इसके बारे में हरिजन में काका कालेकर का एक लेख छपा, जिसमें सुझाव दिया गया था कि अ पर मात्राएं लगाकर सभी स्वरों की जानकारी कराई जा सकती है, जैसे अ आ ई ई उ ऊ ए आए ओ औ अह। साथ ही संयुक्त अक्षरों के विषय भी में भी उन्होंने नए नए प्रयोग बताए थे। इस सुधार को महात्मा गांधी का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। इसी कारण यह लिपि काका कालेकर के द्वारा राष्ट्रभाषा परिषद वर्धा के पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं में प्रचलित हुई। इतना ही नहीं, विनोबाजी ने भी अपने लोक नागरी के माध्यम से सुधार के लिए जनमत को जागृत करने का कार्य किया था। उस समय गुजराती में तो एक शीघ्र सुधार हुआ कि उसमें वर्णों के ऊपर से शुरू धाराएं हटा दी गईं। इसका प्रभाव देवनागरी लिपि पर भी पड़ा और बहुत से लोग शिरोरेखा ही देवनागरी लिपि लिखने लगे। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का प्रस्ताव था कि पंचम वर्णों को मिलाने के स्थान पर सर्वत्र अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए, जैसे अंक के स्थान पर अंक, अंग के स्थान पर अंग, मंच के स्थान पर मंच, दंत के स्थान पर दंत, पम के स्थान पर पम आदि। डॉक्टर गोरख प्रसाद का प्रस्ताव था कि जितनी भी मात्राएं लगाई जाएं वो सभी व्यंजनों के पश्चात दाहिनी ओर ही लगाई जानी चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं बाईं ओर तो कहीं दाईं ओर, कहीं ऊपर कहीं नीचे लगाई जाए। काशी के विद्वान श्रीनिवास का सुझाव था कि देवनागरी लिपि में से सभी महाप्राण ध्वनियां निकाल देनी चाहिए और उनके स्थान पर अल्प प्राण ध्वनि के नीचे कोई चिन्ह लगाकर उसे महाप्राण बना लेना चाहिए। इससे लिपि के अक्षर एवं वर्ण कम हो जाएंगे और यह अधिक उपयोगी हो जाएगी। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी तो देवनागरी लिपि को पूर्णतया अवैज्ञानिक मानते हुए और उनका विचार था कि इसके स्थान पर रोमन लिपि को अपना लेना चाहिए। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया। सम्मेलन ने एक लिपि सुधार समिति का गठन किया। इसकी बैठक 5 अक्टूबर 1941 ईस्वी को हुई। इस समिति ने सर्वप्रथम सुव्यवस्थित ढंग से लिपि सुधार का विचार किया और अपने ये सुझाव दिए। पहला, उ ऊ ए आए की मात्राएं अनुस्वार तथा रेफ को ऊपर या नीचे न रखकर उच्चारण क्रम से अलग अलग रखना चाहिए, जैसे कु ल म उ ल ख ल आदि। ह्रस्व ई की मात्रा को भी व्यंजन के आगे लगाया जाए किंतु इसे तनिक नीचे से बाईं ओर मोड़ दिया जाए और दीर्घ ई की मात्रा को नीचे से तनिक दाईं ओर मोड़ दिया जाए। तीसरा, संयुक्त अक्षरों में आधे अक्षर को आधे रूप में और पूरे अक्षर को पूरे रूप में लिखा जाए, जैसे प्रेम को प्रेम, भ्रम भ्रम, त्रुटि को आदि। चौथा, ई ई उ ऊ ए आई के स्थान पर ओ में मात्रा लगाकर लिखी जाए। तत्पश्चात 1947 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक लिपि सुधार समिति का गठन किया। इस समिति ने पूर्ववर्ती सभी सुझावों का अध्ययन करके अपने ये सुझाव प्रस्तुत किए। पहला, अ की 12 खड़ी भ्रामक है। दूसरा, मात्रा या स्वस्थान बनी रहे किंतु उन्हें थोड़ा दाहिनी ओर हटाकर रखा जाए। तीसरा, अनुस्वार पंचम वर्ण की जगह सर्वत्र शून्य का प्रयोग हो जाए। चौथा, द्विविध अक्षरों में से अ झ ध भ र क्ष त्र श द को रखा जाए और झ भ ध छ त्र श द आदि को निकाल दिया जाए। पांचवा, पाई वाले व्यंजनों को छोड़कर संयोग में हलंत चिन्ह लगाया जाए। और आठ और छठा, ल वर्ण को स्थान दिया जाए। 1953 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्य प्रदेशों की सरकारों के प्रतिनिधियों और विद्वानों की एक गोष्ठी में इन सुझावों को तनिक हेर फेर के साथ स्वीकार कर लिया। इसके अतिरिक्त इस गोष्ठी में ह्रस्व ई की मात्रा को तनिक छोटे रूप में लिखने तथा ख को मिलाकर लिखने का निर्णय किया गया। ह्रस्व ई की मात्रा का खड़ा विरोध हुआ और अंत में 1957 में इसे हटाकर पुनः पूर्ववत ह्रस्व ई की मात्रा का प्रयोग किया जाने लगा। तत्पश्चात 1953 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक परिषद की बैठक लखनऊ में हुई, जिसमें अनेक प्रांतों के मुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री, अनेक भाषा शास्त्री तथा अन्य भाषाविद एकत्र हुए और उन्होंने लिपि सुधार संबंधी अपने ये सुझाव दिए। पहला, ह्रस्व ई मात्रा और ख ध भ छ के स्थान पर क्रमशः छोटी से बड़ी ई की मात्रा तथा मिला हुआ ख ध भ छ अपनाया जाए। दूसरा, संयुक्त वर्णों के स्वतंत्र चिन्हों को छोड़कर शेष वर्णों को मिलाकर ही लिखा जाए, जैसे क्र क्ष त्र श आदि। इस प्रकार देवनागरी लिपि में सुधार हेतु समय समय पर सुझाव और प्रस्ताव आते रहे और सरकारों ने भी इसे सुधारने का प्रयास किया है, परंतु अधिकांश व्यक्ति इसके प्राचीन रूपों का उपयोग करते हैं। इतना अवश्य है कि अब व्यापक रूप से इस लिपि में अ का समावेश हो गया है। इसके अतिरिक्त इस लिपि में अन्य ऐसे चिन्हों को भी अपना लिया गया है जो इसमें पहले नहीं थे, जैसे डॉक्टर वाला अ। इससे अतिरिक्त यदि हम लिपि में मराठी लिपि के साथ साथ ह्रस्व ए ओ को और मिला लिया जाए तो यह अधिक वैज्ञानिक एवं उपयोगी बन सकती है। देवनागरी लिपि और रोमन लिपि। अंग्रेजी के प्रचार प्रसार के साथ भारत में रोमन लिपि ने भी पदार्पण किया और धीरे धीरे इसने अपना एक स्थान बना लिया। अंग्रेजी के पक्षपातियों ने इस लिपि का अधिक समर्थन किया और इसे अंतर्राष्ट्रीय लिपि भी बताया। इसीलिए भारत के सुप्रसिद्ध भाषाविद डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने राष्ट्रलिपि के लिए देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि को अपनाने का आग्रह किया और इसे देवनागरी लिपि से उत्तम बताया। अब यह विचार किया जाए कि उक्त दोनों लिपियों में कौन सी लिपि अधिक उपयोगी है। पहले तो रोमन लिपि के विषय में विद्वानों का विचार है कि यह वर्णात्मक लिपि है और इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह है। इसके साथ ही देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है और इसकी व्यंजन ध्वनियों में दो ध्वनियों का योग रहता है। इस कारण देवनागरी लिपि में ध्वनिशास्त्रीय अध्ययन की सुविधा नहीं है। जैसे यदि रोमन लिपि में महेंद्र लिखे तो यहाँ स्पष्ट पता चल जाता है कि इस शब्द में 8 ध्वनियाँ हैं, जबकि देवनागरी में महेंद्र लिखने पर 4 से 5 ध्वनियों का ही पता चलता है। वैसे यहाँ पर म अ ह ए न द र अ 8 ही ध्वनियाँ हैं, किंतु व्यंजनों में ह्रस्व अ ऐसा मिला रहता है कि उसका बोध सहसा साधारण व्यक्ति को नहीं होता। इसी आधार पर देवनागरी लिपि से रोमन लिपि को उत्तम बताया जाता है। दूसरे, विद्वानों का विचार है कि रोमन लिपि में उच्चारण के अनुरूप लिपि चिन्ह है और इसमें अरबी लिपि की भांति एक वर्ण के लिए कई ध्वनियां नहीं हैं। देवनागरी लिपि में भी यद्यपि उच्चारण के अनुसार ही वर्ण हैं, तथापि कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण अब लुप्त हो चुका है और उनके ध्वनि चिन्ह अभी तक विद्यमान हैं जो अनुपयोगी हैं। अब लोग अंग लिखने के स्थान पर अंक लिखने लगे, प्रत्यंचा लिखने के स्थान पर प्रत्यंचा लिखते हैं, ऋषि को ऋषि बोलते हैं, अतएव उक्त ध्वनियों की उपयोगिता नष्ट हो चुकी है। यदि देवनागरी में ऋषि लिखा जाता है और उसका उच्चारण ऋषि किया जाता है तो उसके उच्चारण के अनुरूप यह लिपि नहीं ठहरती, जबकि रोमन लिपि में ऋषि ही लिखा जाएगा, उसका उच्चारण भी ऋषि ही किया जाएगा, अतएव देवनागरी से रोमन लिपि उत्तम ठहरती है। तीसरे, रोमन लिपि की यह विशेषता है कि जिस ध्वनि का उच्चारण जहाँ नहीं किया जाता वह ध्वनि नहीं लिखी जाती, जबकि देवनागरी लिपि में यह बात नहीं दिखाई देती। जैसे यदि रोमन लिपि में हस्तिनापुर लिखना है तो यहाँ पर HASTINAPUR शब्द के अंतर्गत सभी ध्वनियाँ वही अंकित है जहाँ वे बोली जा रही हैं। यही शब्द देवनागरी लिपि में लिखे तो पता चलेगा कि ह स्ति ना पु र जो हरस ई स और त के बाद बोली जा रही है वह ह के तुरंत बाद स तथा त से पहले भी आ बैठी है, इसलिए देवनागरी लिपि में रोमन लिपि को उत्तम कहा जाता है। उक्त तीन विशेषताओं के अतिरिक्त जब हम रोमन लिपि पर दृष्टि डालते हैं तो पता चलता है कि रोमन लिपि में अच्छाइयों के स्थान पर बुराइयां अधिक हैं। जैसे रोमन लिपि में सभी प्रकार की ध्वनियों के चिन्ह नहीं है, जबकि देवनागरी में प्रायः सभी ध्वनि चिन्ह विद्यमान है। जैसे रोमन लिपि में दंत ध्वनियाँ त थ द ध नहीं है और उनके स्थान पर भी ट ठ ड ढ ध्वनियों का प्रयोग होता है। इसी कारण रोमन लिपि में तोता को टोटा, थन को ठन, दर को डर और धरा को धरा लिखा जाता है, जिससे ध्वनि परिवर्तन के साथ साथ अर्थ परिवर्तन भी हो जाता है। ऐसे ही रोमन लिपि में अड़ और ढ़ ध्वनि के लिए भी कोई चिन्ह नहीं है और इसके लिए वहाँ आर और आर एच का प्रयोग किया जाता है। इससे होता यह है कि रोपड़ को यहाँ रोपर लिखा जाता है तथा बाड़मेर को वहाँ बारहमेर लिखा जाता है, जिससे बारह मेर भी पढ़ सकते हैं। अतः जो कुछ लिखा जाए वही पढ़ा जाए वाले सिद्धांत की पूर्ति रोमन लिपि में नहीं होती। इसके अतिरिक्त रोमन लिपि में प्रायः महाप्राण ध्वनियों के लिए भी कोई स्वतंत्र चिन्ह नहीं है, अतः यहाँ एच लगाकर महाप्राण ध्वनियाँ बनाई जाती हैं, जैसे ख के एच, घ जी एच, छ सी डबल एच, झ जे एच आदि। यदि ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ह से कोई महाप्राण ध्वनि नहीं निकलती, क्योंकि ख को कह कहना, घ को गह कहना, भ को बह कहना युक्त संगत नहीं है। इसके अतिरिक्त रोमन लिपि में मात्राओं का सर्वथा अभाव है। इसके फलस्वरूप रोमन लिपि में लिखे हुए शब्दों से यह जानना अत्यंत कठिन हो जाता है कि कहाँ पर ह्रस्व और कहाँ पर दीर्घ आ का प्रयोग हुआ है, कहाँ पर ह्रस्व ई और कहाँ पर दीर्घ ई का प्रयोग हुआ है, कहाँ पर ह्रस्व उ और कहाँ पर दीर्घ उ का प्रयोग हुआ है आदि। जैसे यदि रोमन लिपि में रामा यानी राम या श्यामा यानी श्याम लिखा जाता है तो अधिकांश लोग इसे रामा और श्यामा पढ़ते हैं, जो सर्वथा अशुद्ध है और इसके फलस्वरूप अर्थ परिवर्तन भी हो जाता है। आज गुप्त को गुप्ता, मिश्र को मिश्रा, शुक्ल को शुक्ला आदि कहने की जो प्रथा चल निकली है उसका मूल कारण यह रोमन लिपि ही है, जिसने लोगों के भ्रम में डाल दिया, क्योंकि वे इस लिपि से गुप्त को गुप्ता लिखते हैं, मिश्र को मिश्रा लिखते हैं, शुक्ल को शुक्ला लिखते हैं और सर्वथा ह्रस्व ओ के स्थान पर दीर्घ आ उच्चारण करते हैं। इस प्रकार रोमन लिपि में लिखा हुआ लिखा कुछ जाता है और पढ़ा कुछ जाता है, अतः यह उच्चारण के सर्वथा अनुकूल लिपि चिन्ह वाली लिपि नहीं है। इसके साथ ही रोमन लिपि में लिखे हुए शब्दों को मनमाने ढंग से पढ़ा और बोला जाता है, क्योंकि उसमें अनेक ध्वनि चिन्हों का अभाव है। जैसे यदि रोमन लिपि में हरियाणा लिखा है तो उसे हरियान, हरियान, हरियन, हरियन, हरियाणा, 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 हरियाणा आदि रूप में पढ़ा जा सकता है और इसे कदापि हरियाणा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि रोमन लिपि में मात्राओं के साथ साथ अड़ा के लिए भी कोई ध्वनि चिन्ह नहीं है और अड़ा का काम न से यानी एन से ही निकाला जाता है। इतना ही नहीं, रोमन लिपि की अपूर्णता के कारण ही बहुत से भारतीय नगरों में शुद्ध नामों का उच्चारण अशुद्ध हो जाता है, जैसे दिल्ली को डलही, कलकत्ता को कैलकटा, लखनऊ को लखनऊ, देहरादून को देहरादून आदि बोला जाता है। इसके विपरीत देवनागरी लिपि में इन नामों को शुद्ध नहीं लिखा जाता, अपितु संसार के अन्य देशों के नाम भी उसी भांति लिखे जाते हैं जिस भांति उनका उच्चारण किया जाता है। अतः यह निर्विवाद सत्य है कि भले ही रोमन लिपि वर्णात्मक होने के कारण अधिक वैज्ञानिक मानी जाती हो, किंतु इसमें भारतीय शब्दों को शुद्ध रूप में लिखने की क्षमता नहीं है। भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त प्रज्ञा, तृतीय, वर्चस्व, ईड़ा, श्रद्धा, विष्णु, मैत्रायण, प्राणायाम, पर्जन्य, प्राज्ञ, प्राण, ब्रह्म आदि अनेक ऐसे शब्द हैं जिनको लिखने के लिए रोमन लिपि में ध्वनि चिन्हों का अभाव है, जबकि देवनागरी लिपि में यह सामर्थ्य है कि वह केवल भारतीय भाषाओं के शब्दों को ही समुचित ढंग से लिखने में समर्थ नहीं है, अपितु विदेशी ध्वनियों को अंकित करने में भी पर्याप्त समर्थ है। यदि उसमें कतिपय नवीन ध्वनियों का समावेश और कर लिया जाए तो यह देवनागरी लिपि न केवल भारतीय भाषाओं के लिए सर्वथा उपयुक्त रहेगी, अपितु संसार की अन्य भाषाओं के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी। इसकी लिपि चिन्हों की बहुलता के से कुछ विद्वान चौक उठते हैं और इसे जटिल एवं कठिन बताते हैं, परंतु वे ये भूल जाते हैं कि लिपि चिन्हों की बहुलता से ही इसे सर्वथा उपयोगी एवं वैज्ञानिक बना रही है और इसमें यह सामर्थ्य उत्पन्न कर रही है कि जिससे वह लिपि सभी प्रकार के उच्चारणों को सुगमता से अंकित कर सकती है। इतना ही नहीं, यदि इस देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को अपना लिया गया तो संस्कृत का सारा गौरवपूर्ण वांग्मय रसातल को चला जाएगा, कोई उसको शुद्ध ढंग से नहीं पढ़ पाएगा और पंचशील को जिस तरह रोमन लिपि में लिखने के कारण पंचशीला पढ़ा जाता है, वैसे ही संपूर्ण संस्कृत साहित्य के शब्दों का अजीब हाल हो जाएगा। इससे न केवल शब्द विकृत होंगे अपितु अर्थ परिवर्तन की भी वृद्धि होगी और संस्कृत भाषा की मूल प्रकृति ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। अतएव रोमन लिपि से देवनागरी लिपि की तुलना करने पर यही ज्ञात होता है कि रोमन लिपि की अपेक्षा देवनागरी लिपि कहीं उत्तम और उपयोगी है। इस लिपि की वर्णमाला भले ही कुछ बड़ी है किंतु यह लिपि सभी प्रकार के ध्वनि चिन्हों से परिपूर्ण है। विश्व की सभी लिपियां अपूर्ण है जबकि देवनागरी लिपि पर्याप्त पूर्ण है। इसके साथ ही संसार की किसी भी लिपि में इतनी सरलता से किसी भी भाषा को रूपांतरित नहीं किया जा सकता जितनी सुगमता से देवनागरी लिपि में किया जा सकता है। शुद्धता, स्पष्टता और सरलता में तो संसार की कोई भी लिपि इसकी समता नहीं कर सकती। आज इसी लिपि में भारत की प्राचीन संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं का विपुल साहित्य उपलब्ध होता है और इसी को सभी प्रकार से उपयोगी जानकर भारत की राष्ट्रीय लिपि घोषित किया गया है। यह देवनागरी लिपि सबसे अधिक सरल है, सबसे अधिक शुद्ध है, सबसे अधिक सुंदर है और सबसे अधिक स्पष्ट है। रोमन लिपि इसके सामने कहीं भी नहीं ठहरती और जो विद्वान रोमन लिपि को अंतर्राष्ट्रीय लिपि कहकर उसकी प्रशंसा करते हैं वे केवल अंग्रेजी के पक्षपात के कारण ऐसा करते हैं, अन्यथा रोमन लिपि से कहीं अधिक पूर्ण देवनागरी लिपि ही है। इस लिपि में संसार के सभी भाषाओं के शब्द अत्यंत शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से लिखे जा सकते हैं। साथ ही देवनागरी लिपि में जो कुछ लिखा जाता है वह पढ़ा जाता है, इसमें सभी ध्वनियों के चिन्ह विद्यमान हैं। इसके ध्वनि चिन्ह प्राय उच्चारण के ही अनुरूप हैं और यह अक्षरात्मक होते हुए भी पर्याप्त पूर्ण तथा रोमन लिपि से कहीं अधिक उपयोगी है। इतना ही नहीं, देवनागरी लिपि रोमन लिपि की अपेक्षा आदर्श लिपि है क्योंकि इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह है, इसमें सभी ध्वनियों के अंकित करने की सामर्थ्य है, यह सुपाठ्य लिपि है। इसके एक ध्वनि चिन्ह में दूसरे ध्वनि चिन्ह का भ्रम नहीं होता। इसकी लिपि अत्यंत सुंदर है, इसमें मुद्रण के लिए आंतरिक सुविधाएं विद्यमान है और यह आशुलेखन के लिए भी सर्वथा योग्य है। यही कारण है कि देवनागरी लिपि रोमन लिपि से कहीं अधिक निर्दोष एवं वैज्ञानिक है।